Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन वही बात फिर जो वेदांत की आपसे यही बात कही थी आज शुरू में कि वेदांत की विशेषता ही ये है कि ये बुद्धि का सम्मान करता है। वेदांत बुद्धि का सम्मान करता है, किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन चमत्कारों की बात भी ये नहीं करता। वेदांत चमत्कार की बात भी नहीं करता। देखो, इसमें कोई आलोचना की बात नहीं। कई बार बात होती है बैठे हुए लोगों से, बल्कि पिछली बार भी ऐसा एक बात हुई कि भागवत कथा बहुत हो रही है, सब सुनते हैं, बड़ा खर्च होता है इस पर, लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें किसी से पूछा कि भाई भागवत कथा तो ठीक है भी बहुत बढ़िया, लेकिन क्या आप इस बात को सच मानते हो कि अजामल ने अपने पुत्र को आवाज दी, नारायण कहा और भगवान आ जाए वहां? इसको दिल से क्या सच मानते हो आप ऐसा कि एक आदमी हो, पढ़ा लिखा भी हो, फिर घर भी छोड़ दे, पत्नी को भी छोड़ दे, वैश्या को ले आए, फिर उसके पुत्र भी हुए, फिर उसका सबसे छोटा पुत्र था और मरते समय उसने उसको आवाज दी और भगवान आ जाए, तो आप क्या मानते हो इसको दिल से? तो फिर किसी से पूछो तो चुप रहते हैं, क्योंकि कथा इतनी बार सुनी, अब ना तो इसको ना कर सकते हैं और ना ही ये कह सकते हैं कि मानता हूं, क्योंकि जो इसको मानता है वो तो समझ लो कि परम भक्त, वो तो या पागलखाने में होगा या ईश्वर के पास बैठा है, दोनों में से एक जगह है उसकी। जो इसको सच मानता है वो यहां नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, अकल ये कहती है कि जिसको आपका दिल ही सच नहीं मानता, उस कहानी को कितनी बार भी सुन लो क्या बनेगा? या तो हो ना कि सच मानते हो तो कुछ बन जाए, जब आपको पता ही है कि ये कहानी ठीक नहीं। देखो, अगर सचमुच में भी उसके मन में, किसी के मन में बेटे के लिए आवाज दी गई हो, तो भगवान आ भी जाएंगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा भगवान को, उसकी तो बेटे में आसक्ति है, भला तो वो बेटे को रहा, उसकी जगह दूसरा आ जाए, उसने क्या करना है उसको, वो कभी उसको पास ही नहीं लगने देगा। ये आप सबका, मेरे सहित ये हम सबका हाल, जिसमें हमारी आसक्ति है, मैं जिसको बुला रहा हूं बात मुझे उसकी चाहिए, उसकी जगह दूसरा आ जाए कोई भी नहीं लेगा, चाहे वो नारायण आ जाए चाहे कोई आ जाए, ये बात कभी स्वीकार ही नहीं हो सकती। हमारी और आपकी बात तो छोड़ दो, तुलसी जैसे वृंदावन में जाके कहते हैं कि तुलसी मस्तक तब निभे जो धनुषबाण लो हाथ, करो बात आप उनकी, वो ही दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे जब तक वो राम के रूप में नहीं आते, तो कौन साधारण आदमी बेटे की जगह नारायण को स्वीकार करेगा? तो इसलिए देखो, इन कहानियों का ये अर्थ नहीं है कि ये कहानियां गलत हैं, ये कहानियां प्रतीक हैं, साधना के इसमें रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब कोई सुनने वाला उठ के प्रश्न करे, सुनने वाला उठ के किसी दिन तो कह दे सुनाने वाले को कि महाराज जी ये बात समझ में नहीं आ रही, आज तक ऐसा हुआ नहीं और कह रहे हैं ये व्यास जी, इसलिए गलत भी नहीं हो सकता, तो इसका रहस्य क्या? ऐसा किसी के मन में आए तो फिर तो चलो बात बन गई, दोनों मिल गए, एक जिज्ञासु मिल गया एक उसको समाधान करने वाले, तो जहां कोई है ही नहीं, सुनाने वाले ने सुनाते जाना है, सुनने वाले ने करते चले जाना है, और उसमें चमत्कार जितने भी कहानियां सुनाते चले जाएं, थोड़ी देर के लिए वो समझ लो कि तेजस में है, आप जिसको यहां आपके उपनिषद में तेजस कहा गया, मनोराज्य, स्वपन, स्वप्न की दुनिया में घूम रहे हैं और उससे ही यथार्थ नहीं रहेगा। तो वेदांत की मुख्य बात यही है कि ये अकल का आदर करता है, सम्मान करता है, किसी का विरोध नहीं करता। अगर हमें अकल से कोई बात ये समझा दे कहानी को कि इसके पीछे ये है, तो हमारे मन में बहुत उसके प्रति श्रद्धा भी होगी और जीवन को बदलने का सूत्र भी हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई समझा नहीं पाएगा ये, तो फिर वेदांत निष्ठ व्यक्ति या जिसकी वेदांत का मतलब आलोचना नहीं, वेदांत का अर्थ इतना ही है कि किसी का विरोध नहीं, क्योंकि वेदांत ये समाधान कर लेता है कि जब एक ही तत्व है सब हर एक में, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो वो अपने आप ही बनता भी है बनाता भी है, तो यहां भी वो बन गया होगा। वेदांत तो चुप हो जाएगा या वेदांति इसको आलोचना नहीं करेगा, वेदांति तो यही कहेगा कि वो तत्व है क्योंकि चेतन है और वो इस तरह के कुछ न कुछ करता रहता है, वो अजामल भी अपने आप ही बन गया, बेटा भी वही बना हुआ है, नारायण भी वही बना हुआ है, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा करके वेदांत तो एक तरफ हो जाएगा। वेदांति तो इसको फिर भी एक थोड़ी देर के लिए वृत्ति का, इसको चेतन का विवर्त कहते हैं, विलास कहते हैं इसको। विलास का मतलब होता है कि जैसे हम और लोगों का मनोरंजन होता है भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, हमें तब मजा आता है जब हम कहीं बाहर कुछ देखें, कोई मेला देखें, कोई चीजें खाएं, कोई आतिशबाजी देखें, वहां कोई बच्चों के खिलौने देखें, कोई उसमें मेरी गो राउंड पे चढ़कर पंघूड़े पे चढ़ के उसके हुलारे लें, झूठे लें, तो उसमें मजा आता है। लेकिन चिंतन में खाली आप अकेले बैठे हुए हैं मन के अंदर, तो फिर वृत्तियों का आनंद है, अपनी ही उस चेतन पर नाच करती हुई वृत्तियों से आप कुछ भी बनाओ। सात्विकता बनी रहे इसलिए इस तरह की कई लीलाएं कई कहानियां बनाई गई। लेकिन जहां श्रद्धा हो, ये श्रद्धा को परिपक्व करती हैं ये कहानी, लेकिन जहां श्रद्धा नहीं है वहां इन कहानियों का कोई अर्थ नहीं होता, वहां इनका कोई लाभ नहीं होता, न सुनने का न करने का। वहां तो जब तक बात समझ में ना आए, समझ में आने वाली बात यही है, फिर दोबारा उसी को दोहरा रहा हूं कि जो कुछ भी आपने उधार लिया हुआ है वो लौटाना पड़ेगा, या जिसने दे रखा है वो ले जाएगा। आप अपने आप को 34 तत्व माने या 5 तत्व माने, पंचकोश माने या 3 शरीर माने या कुछ भी माने, अंतिम बात यह है कि चेतना जब तक नहीं है, आत्मा अगर नहीं है, तो वो सब बेकार वैसे ही रह जाएगा। और मरने पर जो भी तत्व जहां से आए वहां समा जाते हैं, पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में, जल का जल में, उसका उसमें, लेकिन जो आपकी चेतना है ये कहां जाएगी? तो इसने तो ये कहीं से आई हुई नहीं, ये स्वतः सिद्ध है, इसीलिए इसको स्वयं प्रकाश, स्वतः सिद्ध, ये पर प्रकाश है नहीं। कहीं से आई हो तो हम कहेंगे कि उसने भेजी, अगर कहीं से आई होगी तो वो इसको वापस भी ले लेगा। तो ये कहीं से आई भी नहीं है, कहीं किसी की दी हुई भी नहीं है, इसकी रोशनी भी इसकी अपनी, बस इसी की रोशनी से सब कुछ रोशन है। बाकी जो कुछ भी आप देख रहे हो वो केवल जागृत और स्वप्न का विलास मात्र है और कुछ भी नहीं। विलास मात्र का मतलब आप ऐसा कह लो कि ये चेतना ही अपने आप को विविध रूपों में प्रकट करके अपना ही खेल अपने आप कर रही। कुल मिलाकर इस प्रसंग का अर्थ इतना ही होता है कि जो चीजें, जो दैनिक जीवन हम जी रहे, उस जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप परम सत्य ना मान लें कि ये अंतम सत्य है, ऐसा नहीं है। जागृत के समय में स्वप्न नहीं रहता, स्वप्न के समय में जागृत नहीं रहता, सुषुप्ति के समय में दोनों ही नहीं रहते, और समाधि में ये तीनों ही नहीं रहते, न जाग रहे हैं, न सो रहे हैं, न स्वप्न देख रहे हैं। समाधि की एक वो अवस्था है कि उसमें ये तीनों का ही, तीनों से ही आप अलग हो गए। तो जो कुछ भी हम करते हैं इसका महत्व कितना, अर्थात जागते हुए हमारे जीवन में जो राग और द्वेष, राग और द्वेष में शिथिलता आए, राग और द्वेष को हम सच्चा ना मान के बैठ जाए। किसी ने हमारा नुकसान किया तो उसको कोई आपका नुकसान कर नहीं सकता, क्योंकि ये जो आप अंतः प्रज्ञा न बहिष् प्रज्ञा का जो प्रसंग आप देख रहे हैं, इसमें वो तत्व ही ये बात कह रहा है कि जागते हुए सब कुछ देखते हुए भी देखने वाला मैं नहीं, अर्थात ये मेरा विवर्त मात्र है, विलास मात्र है। जिस उपकरण के माध्यम से मैं देख रहा हूं, उस उपकरण के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने से सारी परेशानी। देखो, एक होता है हमने किसी चीज को देखा, दूरबीन से देखते हैं, कहीं किसी जगह पर चले जाओ, टूरिस्ट जगह पर चले जाओ तो वहां दूर दूर की चीजें वो दिखलाते हैं कि भाई आप ये दूरबीन लगा के देखो, फिर वो दूरबीन को छोड़ दो आप तो आंखें उतनी की उतनी ही रह जाती। तो ये जो हमारी आंखें हैं सचमुच की, हमारे कान हैं जो, हमारे हाथ हैं जो, ये आत्मा के उपकरण हैं, इनके माध्यम से आत्मा देखता है। इनको जब भी छोड़ देगा आत्मा फिर वैसे का वैसे ही है। जैसे आप इधर उधर के नजारे देख के दूरबीन फिर वहीं रखाते हो, उसको साथ हमेशा नहीं दिए रहते, ऐसे ही आत्मा इन सब का उपयोग करते हुए, इन आंखों से देख के, इन कानों से सुन के, इन हाथों से कुछ करके, इन सब को यहीं रख के उसने फिर कोई और किसी उपकरण को अपना लेना। आत्मा ने कहीं आना जाना नहीं, लेकिन करते हुए भी अगर इसको हम आत्मा का विलास ही माने, असल में परेशानी इसमें होती है जब हम ये कह लेते हैं कि ये मैंने देखा। जब हम ये कहेंगे कि मैंने स्वयं देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो उस समय मैं आंखों से तादात्म्य करके चेतन और जड़ को एक बना दिया। ये शब्द ही अहम को पैदा करता है, मैंने देखा, मैंने सुना। अगर इसकी जगह हम ये कहें मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, तो हम थोड़ा सा अलग हो गए कि आंखों ने देखा तो इसलिए वो गलत भी देख सकती हैं, कोई जरूरी नहीं कि ठीक ही देखे। लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि मैंने देखा, तो फिर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि मैंने गलत देखा। अगर मैं ये कहता हूं कि ये मैंने देखा और कोई मुझे कह दे कि नहीं जी आपने गलत देखा, फिर मुझे गुस्सा आएगा, मेरे अहम पे चोट लगेगी और मैं उल्टा उसको कहूंगा भी कि अब मुझे समझाएगा तू कि मैंने गलत देखा, तू ठीक है क्या, ऐसे शुरू हो जाएगा क्लेश। और अगर मैं ये मान के ही चल रहा हूं कि देखने वाले इन आंखों ने देखा, गलत देखा या ठीक देखा, कम देखा या ज्यादा देखा, उसका तो कोई मेरा वो नहीं, तो मैं उससे अलग हो जाता हूं। अपने आप को अलग करते ही जो ही मैं और मेरा, मेरे से आप अलग हुए तो आप थोड़ा सा स्वरूप के नजदीक आए, कम से कम और कुछ नहीं तो क्लेश से हम बचने लगे। जो झगड़े हो रहे थे अपने आप को सही मानकर, जो राग और द्वेष हो रहे थे चीजों की सत्यता को स्वीकार करके। देखो, चीजों की सत्यता का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है व्यवहार चलाने के लिए, फर्ज करो 1000 रुपए का नोट ही है और वो नोट पकड़ते हुए फट गया, उसके 4 टुकड़े हो गए, लेकिन जिसका वो नोट है वो उसको तो बर्दाश्त नहीं होगा, वहां तो लड़ाई इतनी भी हो सकती है कि उसके सिर पर डंडा मारे, उसकी मौत भी हो जाए। ऐसे ऐसी बातें अखबारों में पढ़ते हैं कि थोड़े से इतने से पैसे के लिए 2 लोग आपस में झगड़ पड़े, एक ने उसको चाकू मारा, हो खत्म हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने उसमें सत्यता स्वीकार कर ली कि ये सत्य है, वस्तु जो व्यवहार चलाने के लिए है ये स्वप्न मात्र है। वो जैसे स्वप्न में चीजें कुछ बनी और फिर गायब हो गई, ऐसे ही जागृत में भी जितनी चीजें हैं ये हमेशा रहती नहीं, कोई चीज भी नहीं रहती हमेशा, और अपने देखते देखते ही अपना शरीर वो नहीं रहा जो कभी था, जा रहा है पहले किस तरह का, अब किस तरह का, अब किस तरह का, तो वो सब स्वप्न हो गया। स्वप्न का मतलब कि अब उससे चिपके रहे हम। इस समय जो हमारा ये रूप शक्ल सूरत है, ये और 10 साल में 5 साल में नहीं रहनी, इसलिए इसमें शिथिलता आए। शिथिलता मतलब व्यवहार में सुगमता आए। इसका अर्थ इतना ही है कि जब हम अपने आप को अलग करके देखते हैं, ना अंतः प्रज्ञा ना बहिष्ठ प्रज्ञा ना उभयतः प्रज्ञम, जब ऐसा हम, ये आत्मा का स्वरूप है कि जागृत वाला भी मैं नहीं हूं, जागृत में रहते हुए भी जागृत अवस्था वाला मैं नहीं हूं, स्वप्न में रहते हुए भी स्वप्न वाला मैं नहीं। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि जागृत और स्वप्न मेरे विलास मात्र हैं, मैं उनसे चिपका, उनमें से सत्यता किसी की नहीं, सत्य मैं स्वयं हूं, अर्थात चेतना, चेतन ही सत्य है, बाकी कोई चीज सत्य नहीं। इसलिए जो हो गया उस पर लौट के नहीं देखते, जो हो गया वो अब लौट के नहीं आना, जो आपने स्वप्न देख लिया वो भी लौट के नहीं आना, और जो जागते हुए भी दिन गुजर गया वो भी लौट के नहीं आना, जो क्षण भी गुजर गया वो लौट के नहीं आना। इसलिए हम स्वप्न में ना रहे। स्वप्न का मतलब होता है कि हम तो यहां बैठे हुए हैं और मन हमारा भूत में या भविष्य में चला जाए, पुरानी बातों को याद करना शुरू कर दो या आगे आने वाली बातों को याद करना शुरू कर दो, तो हम भूत या भविष्य में चले। कभी भी याद आ जाता है कि अमुक आदमी ने ऐसे कहा था, उसने मेरा अपमान किया था, उसने मेरा यूं किया था, फिर आदमी उसी समय अपने स्वरूप से च्युत हो जाते। जो चेतन तत्व जिसको हम मान बैठे थे, अपने आप को उससे हटकर हमने फिर शरीर से तादात्म्य स्थापित कर लिया। तो यही इसका कुल मिलाकर अभिप्राय है, ये समझाने का उनको कि भाई क्या स्वरूप है असली तुरीय का। तो यहां वो यही कह रहे हैं कि न अंतः प्रज्ञम न बहिष् प्रज्ञम, अर्थात जागते हुए व्यवहार करते हुए भी मैं व्यवहार करने वाला नहीं हूं। आत्मा की दृष्टि से, चेतन की दृष्टि से व्यवहार जितना भी है वो जड़ में है, व्यवहार जितना भी है वो द्वैत में है। जब तक द्वैत नहीं होगा, दो नहीं स्वीकार करेंगे हम, तब तक व्यवहार नहीं होता। और जहां जहां द्वैत रहेगा वहां वहां क्लेश रहेगा ही। क्लेश का मतलब होता है राग द्वेष अविद्या अस्मिता अभिनिवेश। जहां कहीं भी क्लेश शब्द आए, ये पांचों में से कोई एक न एक वहां होगा, या अविद्या होगी या अस्मिता होगी, राग होगा या द्वेष होगा, अभिनिवेश होगा। तो इसलिए व्यवहार करते हुए भी एकत्व पर नजर रहे। एकत्व का मतलब देखो, हर रोज एक बात ये आ जाती है कि संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सारे एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, कोई अलग नहीं है किसी से भी। चार अचार, प्रकट अप्रकट, पशु पक्षी मनुष्य, जलचर थलचर नभचर, पानी आग हवा आकाश, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं। इनको जोड़ने वाली जो शक्ति है, जिस वजह से ये जुड़े हुए हैं, उसी को आत्मा कहते हैं या उसी को ही परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, या सत्य चित आनंद कह लो, उसको तीन शब्द ये बन जाते हैं, सत्य चित आनंद। और फिर वेदांत ये कह रहा है, उपनिषद ये कह रहा है कि वो सत्य चित आनंद सच्चिदानंद आपका ही अपना स्वरूप है और कोई नहीं, आपका ही अपना स्वरूप है। उसका अर्थ केवल इतना ही है, देखो जैसे आनंद है, आनंद की ये विशेषता होती है कि ये जहां होता है वहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि ये हो तो हमारे मन में आनंद आए मेरे मन में, और आगे पीछे ये कहीं और रह रहा हो, इंग्लैंड में रहता हो आनंद, और फिर ये मेरे पास जिस दिन आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। ये जहां अभिव्यक्त होता है, अगर मन में अभिव्यक्त होता है तो इसका निवास भी मन में ही है, ये हर समय वहीं रह रहा, बाहर से नहीं आएगा। एक चीज होती है, बाकी जो भौतिक चीजें हैं वो तो कोई बाहर है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। देखो ये बात अलग है कि आपका कोई मित्र, आपका कोई भाई, आपका कोई बंधु बाहर रह रहा है, और वो बाहर से जब आया हमें मिला तो हम बड़े खुश हुए, लेकिन आनंद बाहर से नहीं आया, आनंद तो आपके अपने अंदर ही था, उसको आपने देखा और वो अंदर का आनंद थोड़ा लहर जैसी उसमें आए। आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे झील में एक कंकर फेंक दिया और झील में तरंगें उठ गईं, तो वो ये जो बाहर से किसी को देख के मैं खुश हुआ तो वो झील में कंकर जैसी बात, आनंद तो मेरे अपने अंदर ही था, उसके आते ही मैं खुश हो गया, वो उद्वेलित हुआ, उजागर हुआ जो सुषुप्त अवस्था में था, लेकिन था मेरे अपने ही अंदर। क्योंकि अगर मेरे अपने अंदर आनंद नहीं होगा तो बाहर की कोई भी चीज किसी भी तरह से मुझे कभी खुश नहीं कर सकती, ये तो बड़ी सीधी सी बात। तो इसलिए आनंद आपका अपना ही स्वरूप, चेतन का मतलब होता है जानना, चेतन भी आप ही हो। देखो अगर सामने सचमुच में भगवान भी आ जाएं तो उनको पहचानोगे आप ही, अब भी आप जाते जाते गणेश जी को आप ही पहचानते हो, गणेश जी नहीं आपको पहचानते कि आओ आप कौन, पहचानने वाले भी आप ही हो, आप ही पहचान के आप ही हाथ जोड़ते हो, आप ही नमस्कार करते हो, वो बात दूसरी है, लेकिन चेतन आप ही हो, चेतना कहीं बाहर नहीं है आपसे। अगर भगवान भी मिल जाएंगे तो अगर हमें उनकी पहचान ही नहीं है तो उनका मिलना ना मिलना बराबर ही, कोई उसका अर्थ नहीं है कि वो मिल जाए। तो इसलिए सत्य भी आप, सत्य का मतलब होना, आपको कोई कितना भी कह ले कि आप नहीं हो इस समय, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा, या आपको कोई ये कहा कि आप अपना प्रूफ दो कि आप हो, कि मैं हूं, इसके लिए कोई प्रमाण दो, बिना प्रमाण के मैं नहीं मानता कि आप हो, तो आप कहोगे जितने मर्जी आप प्रमाण करो मेरे ना होने के, मैं नहीं हूं, इसके लिए आप सारे ही प्रमाण जुटा लो, लेकिन मैं फिर भी हूं, अर्थात मुझे अपने होने के लिए, अपनी इस होने पने को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं, ना इसमें शब्द प्रमाण चाहिए, ना अनुमान प्रमाण चाहिए, ना इसमें कोई जितने भी प्रमाण गिन रखे हैं सबने मिल मिला के, उन आठों प्रमाणों में से कोई मुझे नहीं चाहिए होने में, मैं हूं। तो इसी को सत्य कहते हैं, सत्य का अर्थ हो गया कि मैं हूं, इसका भी मुझे पता है, मैं ही चीजों को पहचानता हूं, तो चित्त इसका मतलब चेतन भी मैं ही, और आनंद मेरे अपने पास है ही, इसीलिए वो प्रस्फुटित होता है। कहीं पर मैं किसी चीज, कभी कोई कुछ भी नहीं होता तो अपने आप ही कुछ सोच के ही मन में बड़ी खुशी होती है, अकेले बैठे हुए, अर्थात समाधि में, उपासना में, इन बातों में हमें अपने आप कितना आनंद आता है, वो आनंद स्वरूप हम स्वयं हैं, बाहर से वो कहीं से नहीं आता। इसलिए जब वो ये कहते हैं न अंतः प्रज्ञा न महेश प्रज्ञा, तो इन सब का निषेध इसलिए है कि अगर हमारी वृत्ति, चेतना की ये वृत्ति बाहर की चीजों को सच समझेगी, अगर मैं ये समझता हूं कि इस समय जागते हुए जो मैं बोल रहा हूं, जो देख रहा हूं, जो कर रहा हूं, यही सत्य है, अगर मैं इसको सत्य मान लूंगा तो इसको स्वरूप ज्योति कहते, अपने स्वरूप से गिर गया। स्वरूप से गिर गया का मतलब ये चीजें जो अभी मैं देख रहा हूं 10 मिनट बाद ये नहीं रहनी, तो इन्हीं को ही मैं सत्य मान के बैठ गया। देखो ये जो हम हर रोज देखते हैं ये कल नहीं रहनी, इस हमारे से पहले कई चले गए देखते हुए, हमारे बाद कई आएंगे देखते हुए जाएंगे इन सबको। अगर इसको मैं सत्य मान लेता हूं तो जो सचमुच में सत्य है, देखो ये व्यवहारिक सत्य है, कोई प्रातिभाषिक सत्य है, कोई परमार्थिक सत्य है, फिर एक परम सत्य है। ऐसा करके सत्य का भी विश्लेषण करते करते वो, तो ये सब जो कुछ है ये है तो सही, लेकिन परम सत्य जो है ये बाकी सब सत्य उसके विवर्त है। इसीलिए ये बात कही गई कि झूठ कुछ नहीं। झूठ कुछ नहीं का अर्थ ये है कि ये है तो सत्य लेकिन ये परम सत्य नहीं, बस इतना ही इसका अर्थ है कि ये व्यवहारिक सत्य है, ये प्रातिभाषिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य है, लेकिन परम सत्य नहीं। जो परम सत्य नहीं उसी को हम झूठ कह लेते हैं कि ये झूठ है, ये गलत है, ये परिवर्तनशील है, ये असत्य है, ये माया है। असल में माया नाम की कोई चीज होती नहीं है, एक ही तत्व है और वही तत्व का जो परिवर्तनशील रूप है उसको माया कह लेते हैं, और बाकी जितने भी जो उसका स्थायी रूप है। देखो हर चीज में कोई भी, अगर भौतिक चीजें भी आप देखेंगे तो उसमें हर एक में एक स्थायी होता है, एक नीम होती है और बाकी उसके ऊपर बिल्डिंग बनी होती है। नीम हमेशा स्थायी रहेगी जिस पर बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंगें गिर भी जाएंगी, नीम तब भी रह जाती है नीचे, वो फिर कोई खुदाई वाले ही आके 100 साल बाद खोदेंगे तो उसमें फिर कुछ निकल आएगा कि यहां ये हड़प्पा था, ये मोहिंजोदारू था, ये अमुक सभ्यता थी, ये वो सभ्यता। नीम अभी तक भी नहीं गई। तो ये तो भौतिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि जो नीम है वो बनी रहती है। ऐसे ही हर एक विषय कोई भी आप चीज लोगे उसमें एक उसका स्थायी रूप होता है, एक उसका अस्थायी रूप होता है, एक उसका चलता रहता है। देखो हवा है जैसे, तो हवा कभी आपको चलती हुई नजर आएगी, कभी आपको रुकी हुई नजर आएगी, कभी आपको कुछ नजर आएगी, लेकिन वस्तुतः ये ना ऐसा हर समय, जो कभी हवा बड़ी तेज लगी हमें कि अब चल रही, जब नहीं चल रही होती तो उस समय इसका ये अर्थ नहीं है कि अब वो खत्म हो गई। इसका एक उसको वायु तत्व कहते हैं, तत्व रूप से ये हमेशा है और हर जगह है, उसका शब्द बन गया कि ये तत्व रूप से वैसे है। ऐसे ही आत्म तत्व अर्थात ये मेरा शरीर है, ये तो ठीक है, ये तो वैसे ही है हवा की तरह, कभी उछलेगा, कभी कूदेगा, कभी कुछ है, कभी नहीं रहेगा, कभी था नहीं पहले, लेकिन जो आत्म तत्व है तत्व रूप ये हमेशा था हमेशा रहेगा, ऐसा इसका अभिप्राय। ओम तत्व।